Eso dicen los divinos. यम और नियम के प्रसंग में अहिंसा के बाद सत्य की चर्चा कर रहे थे। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे चैप्टर में का ये आठवां भाग है। हमने पिछले बार चर्चा की कि दो तरह के सत्य होते हैं, एक जो यूनिवर्सियल ट्रूथ है, जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, वो डजेंट चेंज इन एनी सर्कमस्टेंसेस, इन एनी प्लेस और टाइम, दैट इज कॉल्ड रीतम, उसको हम रीत कहते हैं। दूसरा जो सत्य है, जो सब्जेक्टिव ट्रूथ है, विच इज ट्रूथ बट इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, टाइम, प्लेसेस एंड ऑल द थिंग्स। जो हम एक ऑनेस्टी की बात करते हैं, वो वही सच है जो समय और स्थान परिस्थिति के हिसाब से बदलता है, बट हमारा इंटेंशन होता है, जो हमें पता है हम उसको उसे बोले। ये हमने चर्चा की थी। सत्य का क्या डेफिनेशन है, महर्षि पतंजलि लिखते हैं, सत्यम यथार्थे वांग मनसे, वाणी और मन जब एक जैसा हो, जो मन में सोचे वही वाणी में हो, वही सत्य है। सत्य मतलब ये सब्जेक्टिव ट्रूथ है। जरूरी नहीं कि जो हम मन में सोचते हैं वो सही है, या जो हम मन में सोचते हैं वो सच भी है, वो झूठ भी होता है। ज्यादातर सच जो इसको हम सच मानते हैं वो हमारा परसेप्शन है, वो जरूरी नहीं कि वो सच हो, पर ऐसा हम मानते हैं कि सच है, पर उसी को बोलना भी अनिष्टी है जो हम मानते हैं। पर स्वामी जी ये क्लियर करना चाहते हैं महर्षि पतंजलि कि सच बोलना जितना जरूरी है, आप जो बोल रहे हो वो सच है इसको कंफर्म करना भी बड़ा जरूरी है। और ज्यादातर दुनिया में जो लड़ाइयां है, जो आपस में जो झगड़े हैं, वो सच के ऊपर है कि मेरा सच ज्यादा सच है कि तुम्हारा सच ज्यादा सच है। अगर सच है तो फिर दोनों का सच एक होना चाहिए, तो फिर क्यों मियां बीवी में, बच्चे और माता पिता में, दोस्त और दोस्त में, देश और देश में, एक दूसरे में क्यों लड़ाइयां होती? हर आदमी ये साबित करता है कि मैं सच बोलता हूं, फिर लड़ाई क्यों है? कहीं ना कहीं कोई किसी के गलती है, पर प्रॉब्लम है कि क्योंकि मैं बोलता हूं ये सच है, यही झगड़े का जड़ है। इसीलिए सच बोलने से पहले ये सोच लेना बड़ा जरूरी है कि जो मैं बोलता हूं वो सच है, या मैं मानता हूं ये सच है, इज इट माई परसेप्शन और इज इट एक्चुअली ट्रूथ, ये डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है। इसीलिए ये एक दूसरा डेफिनेशन है शंकराचार्य का। कहते हैं यत वस्तु यथास्ति तस्य तथैव वर्णनम्, जो वस्तु या जो इंसिडेंट जैसा है उसको वैसा बताना सच है, और ये मुश्किल काम है। जैसे हम पिछले बार चर्चा कर रहे थे, दुनिया में बहुत सालों तक, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में, ये परसेप्शन था ट्रूथ के बारे में कि सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है, और जब गैलीलियो ने या किसी ने साबित करने की कोशिश की उसको सजा मिलता था, क्योंकि आप झूठ बोलते हो, हमारे सत्य के झूठ उल्टा बोलते हो, इसलिए आप झूठ हो। तो इसीलिए बड़ा जरूरी है सत्य को समझना। जब आप रास्ते में गाड़ी चलाते हैं या पैदल चलते हैं किसी रेगिस्तान में, डिजर्ट एरिया में, या आप हाईवे पर भी गाड़ी चलाते हैं, आजकल की धूप का समय है, आपको ज्यादा दिखेगा, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आपको दूर से अगर दोपहर को गाड़ी चलाते हैं तो आपको रास्ते में पानी पानी दिखता है। तो जितना आप नजदीक जाते जाएंगे वो पानी आगे आगे बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे जब आपको आदत पड़ जाता है तब आप समझ जाते हैं कि ये तो इल्यूशन है, ये तो मैरेज है, ये एक तरह की मृग मरीचिका इसको बोलते हैं, ये सच नहीं है। पर आज पहली बार आप देख रहे हैं तो आपके बगल में बैठने वाले व्यक्ति को आप बड़े जबरदस्ती बोलेंगे, देखो पानी है रोड पर। तो इसीलिए ये जान, उस पानी तक पहुंचना जरूरी है, उस पानी जहां तक है वहां पहुंचना जरूरी है, को पानी है कि नहीं है। ये जो थियोरी ऑफ माइरेज है, ये जो मरीचिका का जो कंसेप्ट है, ये हमारे लाइफ में ज्यादातर होता है कि हम जिसको सच मानते हैं उसको परखने की कोशिश नहीं करते कि वो सच है या नहीं है, पर हम उसको सच बोलने के चक्कर में, अपने आप को अनेक साबित करने के चक्कर में उस सच के पीछे भागते हैं। तो फिर सो व्हाट डज टेलिंग द ट्रूथ मीन, तो सत्य बोलने का मतलब क्या है? सत्य बोलने का मतलब है कि वो ठीक है, मैं जो जानता हूं वो झूठ है या गलत है वो अलग बात है, पर मेरा इंटेंशन ऑनेस्ट होना चाहिए, मेरा जो मेरा भाव है बोलते समय वो ट्रूथफुल होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूं जितना मैं जानता हूं उसके अकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, ये होना बड़ा जरूरी है। तो सच बोलने से पहले वी हैव टू बी कॉशस, व्हाट एवर आई एम सेइंग इट इज ट्रूथ और इट इज माय परसेप्शन दैट इट इज ट्रूथ, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो इसके लिए क्या जरूरी है करना? कि सच को परखना बड़ी जरूरी है, और उसके लिए हमारे अलग अलग दर्शन शास्त्रों में, हमारे अपने धर्म में 6 तरह के फिलोसफीज हैं, 6 तरह के 6 टाइप्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थ्योरीज फिलोसफी हैं दुनिया में। तो बाकी धर्मों का अपना अपना एक थोड़ा, बहुत सारे धर्मों के तो अपने फिलोसफी ही नहीं है, वो थियोलॉजी पर ही बेस्ड हैं। ज्यादातर जो दुनिया में बड़े बड़े इंटरनेशनल रिलीजियंस हैं उनका अपना कोई फिलोसफी नहीं होता है, वो थियोलॉजी या माइथोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। पर जो वैदिक धर्म की जो अपने फिलोसफी है वो भी एक नहीं है, 6-6 तरह के हैं, मीमांसा, वेदांत, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, और हर फिलोसफी का अपना अपना विचार है। तो अलग अलग फिलोसफी में सच को परखने के लिए कैसे सच क्या है जाना जाए, उसके लिए अलग अलग नंबर्स के वो टेस्टिमोनीज बताए गए कि कैसे पता चलेगी क्या सच है क्या झूठ है। पतंजलि योग दर्शन 3 तरह के मीन्स मानता है, जिसकी चर्चा हमने पिछली बार की थी। एक प्रत्यक्ष, मतलब इट हैज बीन नोन बाय मीन्स ऑफ सेंसेस, जो हम अपने सेंसेस के द्वारा जानते हैं वो प्रत्यक्ष है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट नॉलेज परसेप्शन। आपने आंखों में देखा, कान से सुना, नाक से सूंघा, तो आपको पता चला कि ये क्या स्मेल है, क्या क्या कलर है, क्या व्यक्ति कौन है, क्या बोल रहा है, जो आपने आंखों से मुंह से देखा। पर जो कुछ आपने देखा सुना जाना वो हमेशा सच होता ही नहीं है। आप किसी को दौड़ते हुए देखते हैं तो आपने कहा कि, और बगल में किसी घर में चोरी हुई तो आप कहेंगे ये चोर है, क्योंकि जब चोरी हुई थी यही दौड़ रहा था। कभी कभी पुलिस पकड़ने के लिए दौड़ती है किसी आदमी को, चोर को, और आदमी दौड़ता है और जब पकड़ता है तो पता चला वो चोर नहीं है, तो तू क्यों दौड़ रहा था? मैं तो पुलिस को देख के डर के मारे दौड़ रहा था। तो हर चोरी की घटना पर जो दौड़ता है वो चोर है, हर खून की घटना पर जिसके हाथ में बंदूक है या छुरी है वो भी हत्यारा है। ये कितना गलत मिसपरसेप्शन है, कितने लोग बेचारे सीधे साधे मारे जाएंगे। पर क्योंकि इस तरह के परसेप्शन हम पालते हैं, इसलिए जेल में ज्यादातर गलत लोग जेल में होते हैं, क्योंकि ये इंसान का जो अपने परसेप्शन को सच मानने की जो बीमारी है, वो पुलिस हो या आम आदमी हो, उसके कारण दुनिया में जो जो समाज जितना जितना डेवलप्ड नहीं है वहां गलत लोगों को जेल में उतने डाले जाएंगे, आपको डालते हुए दिखे जाएंगे, क्योंकि सच को समझने में जो जो गलतियां है उसके कारण समाज में कितना नुकसान होता है। उससे एक और शटल फॉर्म में सच को परखने के लिए जो है उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इन्फेरेंस, अनुमान। आपका बच्चा जब आपके सामने पढ़ रहा हो तभी आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो आपके आपके अंदर कहीं गड़बड़ है। फिर बच्चे को आप चांस दे रहे हैं आपको उल्लू बनाने के लिए, वो जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे वो पढ़ता हुआ दिखेगा आपको, दरवाजा बंद कर, क्योंकि आपको यकीन नहीं है कि वो पीछे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आपको सिर्फ अपने आंखों पर भरोसा है, पर दुनिया आंखों से बाहर ज्यादातर है। आपको बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है उसके लिए दूसरे टूल्स अपनाने पड़ेंगे, और उसी को कहते हैं टूल्स ऑफ इन्फेरेंस, या आपके अनुमान की शक्ति होनी चाहिए कि बच्चा अगर, बच्चे को अगर नॉलेज है, बच्चा अगर अच्छा रिजल्ट करता है इसका मतलब वो आपके सामने नहीं पढ़ता, इसका मतलब है कि वो पढ़ता है, आपको दिखा कर नहीं पढ़ता। और आपकी डिमांड वगैरह कि वो आपके सामने पढ़े तो वो आपके सामने कुछ भी पढ़ सकता है आपको उल्लू बनाने के लिए। बहुत सारे सोसाइटीज में हम देखते हैं ये जनरली वहां होता है जहां के जो जो चीफ होते हैं, जो मुखिया होते हैं, अगर उनको सच परखने की सही ज्ञान ना हो तो ऐसे ऐसे परिवार में, ऐसे समाज में, ऐसे संगठन में इस तरह की गड़बड़ियां होती है। जो 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 चालाक लोग हैं वो हमेशा क्रेडिट ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारा चीफ है उसके सामने काम करता हुआ दिखो तभी उसको यकीन होता है कि कोई काम कर रहा होता है। बाकी जो सचमुच काम करता है वो जरूरी नहीं कि आपके आने पर वो काम करता हुआ दिखाई दे, और आपको यकीन नहीं हो रहा है, मैं तो जब भी आता हूं तुम घूमता हुआ दिखते हो तो क्या करते हो। तो ऐसे लोगों के अंडर काम करने वाले लोग क्या करते हैं, वो तभी काम करते हैं जो मालिक सामने होता है। ये प्रॉब्लम सबोर्डिनेट्स की नहीं है, उस ओनर की या उसको उस मैनेजर की है जिसको सच परखने की कोई तरीका पता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेंसेस पर भरोसा करता है, जो पहला टूल है कि प्रत्यक्ष पर भरोसा कर, उसी पर करता है। पूरी दुनिया अनुमान पर चलता है। इसीलिए तो दूसरा तरीका है कि आपके पीछे भी बहुत कुछ घट रहा है, अंधेरे में भी बहुत कुछ घट रहा है, उसको जानने की जो तरीका है उसको हम अनुमान कहते हैं। और ये जो अनुमान ज्ञान है इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कॉजेशन, कारण कार्य संबंध पर टिका है। आपके ना होने पर भी अगर कमरा साफ है और आपके सामने सफाई नहीं होती है तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपके पीछे कोई साफ कर रहा है। सामने साफ करना जरूरी नहीं है, कमरा साफ होना चाहिए। अगर आपके सामने कमरा साफ है इसका मतलब कोई पीछे साफ कर रखा है, इसी को अनुमान कहते हैं। क्योंकि बिना साफ किए अपने आप कोई साफ होता नहीं है, अगर साफ कमरा है तो किसी ने साफ किया है, इसी को अनुमान कहते हैं। जिंदगी में इस अनुमान ज्ञान को जितना हम मजबूत करेंगे उतना हम सच्चाई को बारीकी से जान पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर देखे हुए सुने हुए चीजें सच नहीं होते हैं। द थर्ड वन इज, दुनिया में बहुत सारे चीजें हैं जिनको हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना जिसका कोई हम अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि अनुमान करने के लिए, जो इन्फेरेंस के लिए जरूरी है कि वो बातें, वो जो रिलेशनशिप हो वो कजेशन की थ्योरी पर बेस्ड हो, पर हमेशा ऐसा नहीं दिखता। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होता है, ये ट्रुथ है, ये 100% ट्रुथ है, ये प्योर ट्रुथ है। तो जहां भी आपको धुआं देखे आप कह सकते हैं कि वहां आग है, क्यों? क्योंकि आपने जब भी धुआं को देखा और उसके नजदीक गया देखा कि वहां कोई कोई आग जल रहा था। तो ये जो कॉजेशन है थ्योरी कि धुआं आग के कारण होता है, जब ये आपके दिमाग में बैठता है तो आप हर जगह धुआं को, धुआं देख करके आग के अनुमान करते हैं। पर बहुत सारे जगह हैं जहां आपको ना कारण मिलता है ना कार्य मिलता है। जैसे ईश्वर को जानने के लिए, आपके हिस्ट्री में क्या क्या घटनाएं हुए उनको जानने के लिए, कि महात्मा गांधी नामक एक व्यक्ति थे, अब उसका तो कोई आज की तारीख में ना आप देख सकते हैं ना कोई अनुमान कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ कॉजेशन वहां लगा सकते हैं। आपका देश गुलाम था कि अमेरिका में आज से 50 साल पहले स्लेवरी सिस्टम था, ये आप कैसे जानेंगे? तीसरा है वर्ड टेस्टिमोनी, शब्दों के आधार पर, वो शब्द लिखा हुआ है या सुना हुआ हो। और ये जितना एक इंसान को नॉलेजेबल बनने के लिए, सच को जानने के लिए बहुत जरूरी फॉर्म है, उतना डेंजरियस भी है। इंसान जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो हुए बिकॉज ऑफ शब्द वर्ड टेस्टिमोनी। आप जितने ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ेंगे, न्यूज सुनेंगे, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप लर्नड पर्सन या वाइज मैन कहलाएंगे। तो इसका मतलब बहुत बड़े ज्ञानी बनने के लिए शब्द ज्ञान बहुत जरूरी है, पर शब्द ज्ञान के आधार पर ही दुनिया में सारे जो गड़बड़ियां भी होती है, जितने फॉल्स नॉलेज है वो भी शब्दों से आते हैं। ये जो रिलीजियंस को आप देखते हैं, अलग अलग रिलीजियंस एक दूसरे से लड़ते हैं, और ज्यादातर रिलीजियन जो सुपरस्टिशंस को फैलाते हैं, उसका मूल कारण क्या है? वो शब्द ज्ञान। तो इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि शब्द वही प्रमाण होना चाहिए जो आप्तवाक्य हो, जो रिलायबल सोर्स से आया हुआ हो। ये परखना आपको हमारा काम है कि जो किताबें मैं पढ़ रहा हूं, जो न्यूज में ले रहा हूं, वो किसी उसका सोर्स रिलायबल है या नहीं है। सत्य का एक दूसरा दूसरा पहलू है पतंजलि की योग दर्शन का जो भाष्य है, जो कमेंट्री है, वो व्यास ने किया है, व्यास की कमेंट्री है। परत्र स्वबोध संक्रांतये वागुक्ता सायदि न वंचिता भ्रांता व प्रतिपत्ति बंध्या व भवेदिति। अपनी सोच को, अपनी अपने अंदर दिल में चल रहे हलचल को दूसरों तक पहुंचाने का नाम भाषा है, लैंग्वेज है, और वो ऑनेस्ट होना चाहिए, उसी को सच बोलते हैं। पर सच के लिए तीन तीन चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। वो सच डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए, धोखा देने वाले लैंग्वेज में नहीं बोली जानी चाहिए, कंफ्यूज करने वाली भाषा में नहीं बोली जानी चाहिए, या निरर्थक शब्दों में, मतलब ऐसी आप सच बोला पर आपकी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो समझने लायक नहीं थी तो भी वो झूठी है। आपने सच बोला पर घुमा फिरा के बोला तो भी वो झूठ है। आपने सच बोला पर कंफ्यूज ऐसे वर्ड्स यूज किए कि सामने वाला, आप तो सच, आप सच्चा है यह साबित हो जाए, सामने वाला ही गलत सुना, गलत सोचा, गलत समझा, यही साबित हो जाए, तो ये भी झूठ, ये कंफ्यूज। ज्यादातर आप मीडिया को देखेंगे, जो 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 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो मीडिया मीडिया के जितनी बातें, जनरली मीडिया में जो बातें आता है हमें लगता है वो सच है, पर मीडिया की जो सच्चाई है वो दो चीजों पर बेस्ड होता है, डिसेप्टिवनेस और एक कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। इसीलिए मीडिया पर 100%, खास करके पॉलिटिकल न्यूज के बारे में तो 100% कभी यकीन मत करिए, किसी भी देश की मीडिया। नेता ने बोला कुछ, मीडिया वाले कैसे आपके सामने उसको प्रेजेंट करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नेता ने बोला, मीडिया में दिखाया गया कि नेता ने बोला चोरी करना अच्छी बात है, कितना बुरा नेता है, चोरी करने को अच्छी बात कहा, सभी मीडिया में दिखाया गया। आपको लगा कि नहीं मैं इसके जरा वेरीफाई करूं, आप इंटरनेट में गए, पूरा स्पीच सुना, तो आपको पता चला कि नेताजी कह रहे थे चोरी करना अच्छी बात, ऐसा जो लोग मानते हैं उनसे सावधान रहो। मीडिया वालों ने सभी उड़ा दिया, चोरी करना अच्छी बात को क्लिप को ले लिया और दिन भर चलाते रहे। और ज्यादातर पॉलिटिकल न्यूज और वॉर रिलेटेड, लड़ाई से रिलेटेड न्यूज हमेशा डिसेप्टिव लैंग्वेज में होता है, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। और हम तो भारतवासी हैं और हमारी मीडिया तो बहुत ही, पॉलिटिकल लीडर जितने करप्ट नहीं है, इंडियन मीडिया उससे बेहद ज्यादा करप्ट है, वो ज्यादा डिसेप्टिव लैंग्वेज यूज करता है। तो ये सावधान रहने, और हम अपनी रियल लाइफ में भी अपने आप को ऑनेस्ट दिखाते रहे, पर सामने वाला हमेशा जो मेरा इंटेंशन है वो समझे, न कि मेरी लैंग्वेज समझे, तो हम कभी कभी डिसेप्टिव या कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि सत्य का एक दूसरा पहलू है, वो है कि इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, ये दोनों में फर्क करना जरूरी है। ऑनेस्टी, आप पब्लिक लाइफ में ऑनेस्ट हैं, जब दूसरों से बात करते हैं, दूसरों के सामने जब आप बिहेव करते हैं तो आप सच बोलते हैं, सच्चा जैसा व्यवहार करते हैं, पर क्या वो सच्चाई दिल में है? वो दिल में अगर है, दैट्स योर इंटीग्रिटी। एक व्यक्ति दावा करता है कि मैं चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता हूं का मतलब नहीं है ये इज ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि बहुत सारे लोग चोरी इसीलिए नहीं करते हैं कि वो चोरी को बुरा मानते हैं, इसीलिए नहीं करते हैं कि क्योंकि वो डरपोक है, वो पुलिस से डरते हैं, सोसाइटी से डरते हैं, बदनाम होने से डरते हैं। अगर पुलिस ना होती, सोसाइटी की कोई झंझट नहीं होता, डिफेम होने का कोई चांस नहीं होता, तो वो खुलेआम कर सकते थे, क्योंकि उनको डर है अपनी बदनामी की, अपनी ओ की, वो चोरी नहीं करते। पब्लिक में उनका इमेज होता है इज ए ऑनेस्ट पर्सन, बट इंटरनली ही लव्स टू स्टील। पर मौका नहीं मिलता, इसीलिए किसी को ऑनेस्ट समझने या खुद को ऑनेस्ट समझने से पहले यह परखना बड़ा जरूरी है कि उसकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, उसका अंदर और बाहर दोनों में है कि नहीं। पब्लिक के सामने किसी का बटुआ गिर गया, पर्स गिर गया, या अटैची गिर गया जिसमें $50, $100, $200, $1,000 पड़े थे, आपको दिखा, आप इग्नोर करके हम चले गए, या पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया, या वो यार ऑनेस्ट। पर परख तब होता है जब कोई ना हो, कहीं कोई दूर दूर तक नहीं हो, मिलियंस ऑफ डॉलर खाली पड़े हुए हैं रोड पर या जंगल में कहीं भी, जहां कोई देखने वाला नहीं हो, आपको उठाते समय किसी को कोई नजर नहीं होने वाला है, आप अकेले अकेले हैं, पर मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर है, उसके बावजूद भी अगर हम उसको उठाते हैं और उठाते समय कोई फीलिंग नहीं होती है कि मैं उसको पास रख दूं और उसको लेकर पुलिस स्टेशन में या कहीं जमा कर देते हैं, दैट इज इंटीग्रिटी। इसीलिए ये सच्चाई की ये जो दोनों फॉर्म है, एक अंदरूनी और एक समाज के साथ डील करते समय और एक खुद से डील, ये जो इंटीग्रिटी है ये खुद से सच्चा होने का सर्टिफिकेट है, ये किसी के सामने साबित करने की नहीं, मैं सच्चा हूं उसको साबित करने के लिए। ऑनेस्टी पब्लिक लाइफ में, सोसाइटी में सच्चा हूं साबित करने के लिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में इंटीग्रिटी की ज्यादा महत्व है ऑनेस्टी की बनिश्वर। ये एक यजुर्वेद के जो अंतिम अध्याय जिसको हम ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, उसका एक मंत्र है, और मंत्र देखिए कितना कमाल का मंत्र है, हजारों साल पहले की मंत्र है। अब वो कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पोषन्नपाभृणो सत्यधर्माय दृष्टये। बड़े इंटरेस्टिंग है, देखिए उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसको समझ में आ रहा है। सच हमेशा धन के नीचे दब जाता है, द फेस ऑफ ट्रूथ इज कवर्ड बाय ए गोल्डन बाउल। ये गोल्डन बाउल क्या होता है? धन, वेल्थ, ये इटर्नल ट्रूथ है। जिसके पास पैसा है उसी की वाणी सच है, जरूरी नहीं पैसा, धन हो। धन बहुत तरह तरह के होते हैं, जो नेता बोले वो सच है क्योंकि उसके पास लोक बल है, पब्लिक फोर्स है। जो एक प्रोफेसर बोले, साइंटिस्ट बोले वो सच है क्योंकि उसके पास ज्ञान का धन है। जो बहुत धनी है वो जो बोले वो भी सच है क्योंकि उसके पास धन है। एक आम आदमी, कम पैसे वाला, कम पढ़ा लिखा, जितना भी सच बोले बहुत कम भरोसे के लायक होता है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दुनिया के सारे देश मान रहे हैं, हर पढ़ा लिखा आदमी मान रहा है, पर अमेरिका के एक बहुत बड़ा ग्रुप इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एक पार्टी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनके अपने साइंटिस्ट हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो कोई अनपढ़ नहीं है, वो साइंस के टीचर नहीं है, वो साइंटिस्ट हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग नामक कोई चीज नहीं है, समथिंग फॉल्स। क्यों? मल्टीनेशनल कंपनीज उनको बिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं यही साफ प्रूफ करने के लिए कि बोलो कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं, हमें वो अलाउ करें, हम अपनी फैक्ट्री में कैसा भी कुछ भी करें। और ज्यादातर अमेरिकन इसको बिलीव करते हैं क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी एक कंज्यूमर सोसाइटी है, उनको भोगना है। वो अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात यहां एक्सेप्ट किया जाए तो बहुत कुछ बंद होने वाला है, गाड़ियां कम होंगी, एसी कम होंगी, बहुत कुछ कम हो जाएंगे। अरे अमेरिकन सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए उनके साइंटिस्ट पैसे के नाम पर ये साबित करने में लगे रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग नाम का कोई चीज होता नहीं है। एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी। ये क्या है? गोल्डन बाउल से सच को छुपाना। जिसके पास ताकत है धन का, ज्ञान का, बल का, ये जो सुपरस्टिशियंस है, अंधविश्वास, जब भी आप लोगों को समझाएंगे ये सुपरस्टिशियन है, ये एस्ट्रोलॉजी बेकार है, ये गुरु डम बेकार है, वो क्या कहेंगे? तू बड़ा समझदार है, देखो कितने सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, लीडर, साइंटिस्ट, डॉक्टर सब ये करते, वो सब बेवकूफ है, तू ही समझदार है। आप समझदार क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि आप, यू हैव नॉट ए गोल्डन बाउल, आपके पास कोई सोने का बर्तन नहीं है जिसे आप सच को ढक सके, ना बहुत बड़े एस्टेब्लिश्ड पर्सन है आपके पास बड़ा ज्ञान है या धन है, ना आप ऐसा कुछ एस्टेब्लिश्ड है, इसीलिए आप अगर बोलेंगे कोई सुनता ही नहीं है। इसीलिए कहा कि तत्त्वम अपाब्रुणु, अगर किसी में ये सेंटिमेंट है, ये फीलिंग है, उस सच्चाई को ढूंढो, पता करो, उसके ऊपर जो ज्ञान का, धन का, ताकत का, लोक बल का, जो एक जबरदस्ती के ढकाया जाता है, उसको कुछ लोग जरूर खोलो। ये सच जो है इसका एक और एक साइड है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग साइड है। ऐसा सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपघाताय, जब आप सच बोले वो दूसरों के हित के लिए होना चाहिए, न कि दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए होना चाहिए। ये बड़ी जरूरी चीज है। सी, ब्रूटल ऑनेस्टी एज ए वेपन इज नॉट सत्य। ऑनेस्टी कैन बी यूज्ड एज ए वेपन, सो बी केयरफुल। मैं एक आम आदमी हूं, आम आदमी का मतलब जो जरूरत पड़ता है झूठ बोलता हूं, जो जरूरत पड़ता है सच बोलता हूं, पर मैं ज्यादा सच तब बोलता हूं जब मेरे से आपकी लड़ाई होती है और मैं आपकी बुराइयां करना शुरू करता हूं, और इस दावे के साथ सच बोला तो तिल मिला गया, पता है हमेशा मैं सच बोलता हूं, सच कड़वा होता है इसलिए चुभता है। सच कभी भी कड़वा नहीं होता है सज्जनों देवियों। जब भी सत्य को अजय विपिन अजय तलवार यूज किया जाता है तभी कड़वा होता है। मैं दिल्ली में जिस गुरुकुल में पढ़ाता था तो वहां कपड़े साफ करने के लिए एक धोबी था। तो एक दिन तो मैं उधर से गुजर रहा था, उसके साथ एक बड़े स्टूडेंट का जो 18-20 साल का स्टूडेंट था उसकी लड़ाई हो रही थी। तो जब मैं गया तो उस धोबी ने बोला, गुरुकुल में गुरुजी बोलते हैं, कि गुरुजी देखिए ये मुझे गाली देता है। तो उस लड़के ने बोला, गुरुजी मैं क्या गाली दिया? मैंने कहा धोबी मेरे कपड़े प्रेस कर देना, ये गाली क्या हुआ? तो धोबी ने मुझे कहा, उसमें जो धोबी कहा और ऐसे नहीं बोला अभी जैसे आपको बोल रहा है, बड़े बड़े बदतमीजी तरीके से बोला। तो लड़का लड़ रहा है कि धोबी को धोबी तो बोला और क्या बोला और क्या बोलता। प्रॉब्लम वहीं पर है हम सबके लाइफ में। धोबी ने मुझे पूछा, क्या धोबी के लिए और कोई शब्द नहीं है गुरुजी? मैंने कहा है ना, रजक बोलते तो वो मुझे रजक बोलता। बात धोबी बोलने की भी नहीं है, आप धोबी बोल सकते हैं। आप किस आप धोबी बोलते समय आपका आपका लिहाजा, आप किस अंदाज में बोल रहे थे, आपकी स्टाइल क्या था, आपकी अप्रोच क्या था, इससे चोट लगता है। धोबी शब्द से नहीं। एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आए यहां, आप उसको बोलेंगे वो मास्टर बैठ जाओ, अब वो शिकायत करेगा, वो कंप्लेन करेगा, देखो ये कितने बदतमीज है। फिर आप लड़ेंगे, क्या गलत कहा जी, मास्टर ही तो है, पढ़ाने वाले को मास्टर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, तो टीचर ही तो बोला, ओए टीचर बैठ जा, और क्या बोला? बट योर इंटेंशन वॉज नॉट टू स्पीक ट्रूथ, योर इंटेंशन वॉज टू हर्ट हिम। आपको टीचर प्रोफेसर से कोई मतलब नहीं था, आपको सिर्फ उसको नीचा दिखाना था, इसीलिए आपने उसको इस अंदाज में बोला। एक अंधे को जब आप अंधा बोल के बोलते हैं तो आप सच नहीं बोलते हैं, आप क्राइम कर रहे होते हैं, आप हिंसा कर रहे होते हैं। तो इसीलिए पतंजलि से लेकर व्यास से लेकर के पूरा वैदिक ऋषि मुनि इस बात पर जोर देते हैं कि सत्य बोलते समय जरूर अहिंसा का ख्याल रखो, ये बड़ी जरूरी चीज है। द प्रैक्टिस ऑफ सत्य इज अबाउट रिस्ट्रेंट, अबाउट स्लोइंग डाउन, फिल्टरिंग केयरफुली, कंसिडरिंग आवर वर्ड, so that when we choose them they are in harmony with the first yama ahimsa. It is clear that Patanjali didn't want his readers to confuse satya with speech that might be factually accurate but harmful. Aap kitne bhi main kitna bhi ganda kapda pehna hua hu, ye factually correct hai, पर ये बोलना जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा है। इट्स नॉट नेसेसरी टू से। आगे महर्षि व्यास लिखते हैं पतंजलि के भाष्य में, यदि चैवमप्यभिधीयमाना भूतोपघात परैवस्यान् न सत्यं भवेत् पापमेव भवेत्। इफ हाउएवर इट प्रूव्स टू बी इंजुरियस टू लिविंग बीइंग्स, Even though uttered as such, it is not truth, it is a sin only. ये पापी है यो सत्य, क्योंकि समय हो रहा है मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसी को मैं मनुस्मृति की एक श्लोक से आपको कोट करना चाहता हूं। तो मनु मनुस्मृति में लिखते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। बोला सच बोलो पर मीठा सच, क्योंकि इंसान हमेशा हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, तो मीठा सच चक्कर में क्या होता है ना, कुछ लोग झूठ बोलने लगते हैं। आप कितना भी गंदा बोलो वो कहेंगे बहुत अच्छा बोला, क्योंकि आपने तो कहा था मीठा सच बोलने के लिए। मीठा सच का अर्थ नहीं है कि आप चापलूसी करें झूठ बोले, इसलिए आगे क्या कहा, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात्। मीठा झूठ मत बोलो। तो इसका अभिप्राय क्या है, कोई शास्त्र आपको ये इनकरेज नहीं करता झूठ बोलने के लिए। सत्य अगर आपको बोलना है सत्य ही बोलिए, सत्य कभी कड़वा नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन क्या है सत्य बोलने के पीछे। हर सच प्रिय हो सकता है, आप चोर को चोर भी कहेंगे तो भी ये तो भी उसको चुभेगा नहीं और आप सच बोलेंगे, पर ये डिपेंड करता है कि आप किस अंदाज में उसको चोर कहते हैं। पर ज्यादातर हम जब सच बोलते हैं तो हमारे एंग्जाइटीनेस बढ़ जाता है, हम स्ट्रेस में आते हैं, हम बड़े कड़वी भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं। घर में जब जब खाना खराब होता है, ये जरूरी नहीं बोलने के लिए कि खाना खराब है, खाना अच्छा है, झूठी तारीफ की कोई जरूरत नहीं। पर लड़ाई क्यों होती है, लड़ाई इसलिए नहीं होती कि आपने क्यों कहा सब्जी खराब है, आप जिस अंदाज में बोला सब्जी खराब है लड़ाई वहीं से होती। लड़ाई इसलिए नहीं होती कि आप लेट क्यों आए पूछा, जिस अंदाज में आपने पूछा वहीं लड़ाई शुरू होती है। किसी भी बात को ना बोलने के लिए कोई मना नहीं है। जो जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है सत्य के कारण जो हमें दिखता है, और ज्यादातर लोग जो लॉजिक देते हैं सत्य ना बोलने के पीछे, वो चुभता है। वो चुभना सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है कि हम दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए जब बोलते हैं तभी चुभता है। अगर मिठास के साथ मनु कहते हैं, अगर आप मिठास के साथ बोलो तो वो सच कभी चुभेगा नहीं। और लास्ट कंक्लूजन के साथ समाप्त करते हैं। वन इज सेड टू स्पीक द ट्रूथ ओनली व्हेन ही और सी फुलफिल्स थ्री कंडीशंस। स्पीच मस्ट बी इन एक्डेंस विथ फैक्ट, जो शुरू में हमने चर्चा की कि आप जो वो सच मानते हो जरूरी नहीं कि वही सच है। सच को पहले परखो। दौड़ते हुए किसी को देखा तो वही चोर है तुम मानते हो तो वही चोर होगा, ये असंभव है। ही शी मस्ट बी गाइडेड बाय गुड इंटेंशन एंड जस्टिस। स्पीच मस्ट बी कॉस्ट इन एग्रेबल वर्ड्स। आपके शब्द सही होना चाहिए सच बोलने के लिए। इट कंसिस्ट इन सेइंग ओनली दैट विच वन हैज डायरेक्टली परसीव्ड इनफर्ड और लर्न्ड फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स। अगर इन सब का हम ध्यान रखें तो हम जिंदगी भर सच बोल के भी किसी प्रॉब्लम किसी के लिए क्रिएट नहीं कर सकना खुद के लिए। दुनिया में सच को बहुत बड़ा, ज्यादातर सच को हम एज ए वेपन यूज करते हैं और ये सोच के खुश होते हैं कि आई एम ऑनेस्ट पर्सन। महर्षि पतंजलि और व्यास क्लियर करते हैं, आपकी हर अच्छाई की परीक्षा अहिंसा से होनी चाहिए। इफ योर इंटेंशन इज टू हार्म समबडी इट इज बैड, इट्स रॉन्ग। बी केयरफुल अबाउट योर इंटेंशन। थैंक यू वेरी मच।